नमस्कार दोस्तों, छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है 15 अगस्त, राष्ट्र का संबोधन या चुनाव प्रचार का मंच। राजनीति तय करती है कि समाज की दशा और दिशा क्या होगी। राजनीति यह भी तय करती है कि देश का भविष्य क्या होगा। इसे समाज का अगुवा माना जाता है, इसलिए राजनीति कभी हल्के उद्देश्यों के लिए नहीं की जाती है। और महान समाज सेवी राम मनोहर लोहिया बेहतर ढंग से समझाते हुए कहते हैं कि जिंदा कौम 5 वर्षों का इंतजार नहीं करती है। इसी के साथ में जिला भाजपा कार्यकारिणी सदस्य संजय पराटकर से जुड़े हुए, साथ ही ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ज्ञानेश्वरी गायकवाड़ जुड़े हुए हैं।
जी
सर, दोनों मेहमानों का मोबाइल पे स्वागत सर आपका।
जी धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
जी सर।
पराटकर सर, मेरा पहला सवाल आप ही से है कि क्या सर आजादी के बाद का जो राष्ट्रवाद था और आज के राष्ट्रवाद को किस तरीके से देखते हैं सर?
सर, आजादी के बाद का जो राष्ट्रवाद और वर्तमान के राष्ट्रवाद में दोनों में बहुत ही अंतर आया हुआ है। आज हम देश में देख रहे हैं कि नई नई चीजें, नई नई आधुनिक चीजों का जो है उनका बढ़ता हुआ प्रचलन हमारे देश को और भी विकसित होने की ओर अग्रसर कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि आज के जिस प्रकार आज हम हमारे देश में नए नए डेवलपमेंट देख रहे हैं, उस हिसाब से 2047 तक हमारा भारत एक विकसित भारत इसके सपनों को साकार करेगा।
और ज्ञानेश्वर जी, इसी को लेकर आपके सवाल है कि क्या सर
देखो,
आजादी के वक्त का जो भारत था और आज का जो भारत है, जो उस वक्त का राष्ट्रवाद और आज के राष्ट्रवाद में कितना अंतर देखते हैं, कुछ फर्क देखते हैं सर?
बहुत जमीन और आसमान का अंतर हो चुका है। देखिए, आजादी के पहले का राष्ट्रवाद था, सभी विभिन्न भाषाओं, विभिन्न बोलियों और विभिन्न समाज के लोगों को एक लेकर एक देश को एक सूत्र में पिरोने का काम होता था। उस समय चाहे मणिपुर में कोई घटना हो, चाहे सिक्किम में कोई घटना हो, चाहे राजस्थान में कोई घटना हो, चाहे राजस्थान का मुद्दा हो, चाहे तमिलनाडु का मुद्दा हो, उसको एक नेशनल लेवल पर लाकर गांधी जी ने लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाई। परंतु आज की वर्तमान में देखिए, आजाद भारत आजाद होने के बाद जब मणिपुर में किसी एक महिला को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ मात्र 15 सेकंड या 20 सेकंड उसमें बोल पाते हैं। दुर्भाग्य की बात है, वो भी देश का हिस्सा है आज। और क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? जो मोदी जी और देश देश पर मोदी जी उसको एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। ये अंतर हो चुका है। आज देश को अलग, देश के अलग अलग राज्यों को अलग अलग नजरिए से देखना चालू हो गया है। तब जब भारत आजाद हुआ, भारत आजाद होने के पहले पूरे राष्ट्र ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तब राष्ट्र राष्ट्र उसी एक राज्य में बटा हुआ नहीं था। ये अंतर आज के भारत में और कल के भारत में है।
जी सर, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसी के साथ में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी के संबोधन को किस रूप में देखते हैं सर? क्या कर सर?
हेलो,
जी गायकवाड़ सर बोलिए सर। हाँ,
गावंडे गावंडे समझ आ रहा है, गावंडे
गांव
पल्ले में
के
सर
सर बोलिए।
आपका सवाल दोहराएंगे सर?
सर मैं ये बोल रहा था कि 15 अगस्त का जो संबोधन था प्रधानमंत्री जी का, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर?
देखो, 15 अगस्त का संबोधन राष्ट्र का संबोधन होता है, ना कि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की उपलब्धियों का संबोधन होता है और ना ही किसी विचारधारा का संबोधन होता है। क्या है जो 15 अगस्त का संबोधन हुआ, आप अपना रिपोर्ट कार्ड बताइए ना, आपने क्या किया वो बताइए। आज भारत में विश्व का सबसे महंगा सिलेंडर खरीदा जा रहा है। आज भारत में, भारत सबसे युवा देश होने के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में है। आज भारत में बेरोजगार युवाओं युवा रोजगार के लिए तरस रहे, ये स्थिति भारत की है। आप मुंगेर लाल के असल सपनों दिखाकर लोगों को लोक लुभावन वादे बताकर, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के लोक लुभावने वादे बताकर सत्ता में आने के बाद उन चीजों को भूल गए। आपने बताना चाहिए था ना, आपने 9 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया, आपने कितनी महंगाई कम की। ये मुद्दे छोड़कर आप और लोगों को स्वप्न दिखा रहे हो कि 2040 तक, 2028 तक ये करेंगे। आपने किया क्या ये बताइए। आप करने वाले थे वो मत बताइए। लोगों ने आपको चुन के दिया कि आप कुछ करेंगे, तो क्या किया ये बताना था आपने, ना कि और कुछ करेंगे और हमें और 10 साल दीजिए और 25 साल दीजिए, ये विषय नहीं है। वो तो लोकतंत्र है, लोग सोचेंगे उस बात पर। तो आप किसी को सत्ता में रहने के लिए लाल किले से लाल किले से उद्बोधन में, अपने उद्बोधन में ये नहीं बोल सकते कि हमको और सत्ता में रहना है, वो देश के मंच है, ना किसी व्यक्ति का और ना किसी पार्टी का।
पराटकर सर, यही सवाल मेरा आपसे है कि जब सर 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ, सर उसको किस
जी
नजरिए से देखते सर आप?
सर, मैं गांधी जी की बात को बड़े गौर से सुन रहा था। उन्होंने जिस प्रकार बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो 15 अगस्त को संबोधित दिया, तो उसमें उन्होंने बहुत सी चीजें हैं जो बताई नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण देश के समक्ष अपने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है, उन्होंने अपनी बात रखी है। और हमारी सरकार की जो कार्य चली रही है वह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की रही है। और भारत में 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद से विभिन्न कार्य हुए हैं जो आज तक भारत में कभी हुए नहीं है। और उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड में ये भी बताया कि आज हमने जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर तक जल पहुंचाया। आयुष्मान भारत योजना से में हमने लगभग 70,000 करोड़ रुपए जो है खर्च किए हैं अभी तक। और हर एक प्रत्येक नागरिक को उस योजना के माध्यम से, चाहे वो इलाज का हो चाहे उसका ऑपरेशन का हो, सारी चीजों का खर्चा उसको 5 लाख तक कर देती है। और कोरोना वैक्सीन में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का सरकार ने खर्च करके पूरे भारतवर्ष में कोरोना वैक्सीन लगाई है। और ये बात तो मात्र सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नागरिकों के लिए नहीं, अपितु पशुधन के टीकाकरण में भी भारत सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च किया है। और रही रही बात पूरे देश में, पूरे देश से मरीजों को जन औषधि केंद्र के माध्यम से लाभ पहुंचाने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है। और 10,000 जन औषधि केंद्र हमारे भारत वर्ष में है, और 15,000 जन औषधि केंद्र खोलने का सरकार ने विचार कर रही है। तो इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस दिन अपना रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया। और रही बात, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार फिर बनना चाहिए, ये देश की जनता तय करेंगी। उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। हमारी सरकार आने के बाद में महिलाओं को, हमारी बहनों को शौचालय, आज हर किसी के प्रत्येक के घर में शौचालय बना। और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि 70 साल में जो कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद जो नहीं कर पाई, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया। उन्होंने प्रत्येक गांव को निर्मल ग्राम बनाया और प्रत्येक परिवार के प्रत्येक घर में एक शौचालय देने का काम किया। और सभी गांवों को निर्मल ग्राम बनाकर उन्होंने स्वच्छता के मिशन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और रही बात महिला सशक्तिकरण की, तो आज महिला सशक्तिकरण में भारत एक बहुत बड़ा लड़ाई लड़ रहा है। और महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और अभी आपको मैं एक नई बात बताना चाहता हूँ कि इसी महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लगभग 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का फैसला केंद्र की सरकार ने किया है, जिसके अंतर्गत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से उनको जोड़कर ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग उनको दी जाएंगी, ताकि वो एग्रीकल्चर में उसका उपयोग करेंगे। आज हमारा देश आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। आज हमारे देश से परिवारवाद समाप्त तो हो रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग नफरत का माहौल बना रहे हैं। और इसी प्रकार से पुरानी सरकारों ने इस प्रकार से कोई नए काम किए नहीं है। इसीलिए आदरणीय जो गांधी जी है, उन्होंने बोला कि माननीय मोदी जी वहां से अपनी सरकार बनाने के लिए ऐलान कर रहे थे। ये करेंगी, उनके उन्होंने अपने कार्यों का स्पष्टीकरण दिया है, चाहे तो ये
गायकवाड़ सर,
उनका
इसको लेकर
भाषण सुन
मेरा एक
सकते हैं।
सवाल था जी गायकवाड़ सर, पराटकर सर, इसी को लेकर मेरा एक सवाल था कि
जी
क्या सर 2014 के जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का सर, उसको जमीनी स्तर पर किस तरीके से आप क्रियान्वित किए हो सर, इस बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं डिटेल में सर?
जी जैसे आप प्रश्न पूछे उस
सर 2014 का जो भाजपा का मैनिफेस्टो जारी हुआ था, उसको सर
जी
धरातल पे किस तरीके से देख रहे सर आप?
धरातल पर 2014 में जो मैनिफेस्टो जो जारी हुआ था, केंद्र सरकार ने जब केंद्र केंद्र में जब हम लोग लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहे थे, उस समय में जो भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें जो जो कार्य मैनिफेस्टो में रखे हुए थे, उन सब कार्यों पर काम हुआ है। आप ये किसी विषय को लेकर आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आप उसका जवाब दे दूंगा आपको।
जी सर,
मैं 2014 के बाद इनका एक विषय भी चाहता हूँ कि आप हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, 2 करोड़ रोजगार आपको मिले हर साल, आप किसानों की आय दुगनी की बात कर रहे थे, दुगनी हुई, आप 100 स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, क्या 100 स्मार्ट सिटी बनी, आप बात कर रहे थे नारी सशक्तिकरण की, आज तो भारत में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, क्या यह नारी सशक्तिकरण हुआ, आप बात कर रहे थे अच्छे दिन आने की, आप जब सरकार में थे तो पेट्रोल था 60 रुपए लीटर और आज 110 लेना पड़ रहा है, क्या ये अच्छे दिन है? 2014 के पहले एक सामान्य व्यक्ति जितने रुपए का एक माह का किराना खरीदता था आदरणीय पराड़कर जी, आज उसको उतने रुपए में खाने का तेल खरीदना पड़ रहा है, क्या ये अच्छे दिन और महंगाई कम होने का सबसे बड़ा आपका वादा है जो आपने पूरा किया? क्या आपने शिक्षा संबंधी जो वादे किए थे कि हम विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था यहाँ बनाएंगे, आज आपके सरकारी स्कूलों में मास्टर नहीं है, ये स्थिति बनाई आपने, आज सरकारी स्कूलों के टीचर और अतिथि शिक्षकगण आज रोड पे हड़ताल कर रहे हैं, ये स्थिति है देश की। क्या आप बताइए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो आज स्वास्थ्य संबंधित छोटे छोटे बच्चों को कुपोषण से निकालने का काम करती है, उनको हड़ताल करना पड़ रहा है, आज सेवा सहकारी के लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं, ये स्थिति बना के रखी है देश की। आज किसान बेहाल है, विद्यार्थी बेहाल है, विद्यार्थियों को स्कूल की स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है मध्य प्रदेश में, ये आपके वादे थे, ऐसे हर क्षेत्र है जिन क्षेत्र में इनने वादे किए समझ जाओ उसको लूटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उदाहरण आपको बताता हूँ, देखिए इन्हें किसानों की आय दुगनी करने की बात की, मान्य और आपको अवगत कराना चाहता हूँ, सौसर क्षेत्र में हर हर पूरा सौसर क्षेत्र कृषि क्षेत्र है और उसमें अधिकतर प्राय प्राय कपास उगाया जाता है, परंतु इस साल कपास के रेट 7,000 रुपए होने के कारण किसानी घाटे का सौदा हुआ है। यदि केंद्र गवर्नमेंट कपास आयात करने का जो उनकी योजना थी वो नहीं लाती तो यहाँ किसानों को कम से कम उनके कपास का भाव 10,000 मिलता, परंतु केंद्र गवर्नमेंट जो आज मोदी जी की है उन्होंने किसानों को न देखते हुए उद्योगपति का साथ देते हुए आप विदेशों से कपास बुलाया और जिसके कारण आज पूरे क्षेत्र में 7,000 रुपए क्विंटल कपास बिक रहा है। छोड़िए, चलो कपास बिक रहा परंतु उसको जो लागत मूल्य वो भी वसूल नहीं हो रहा है। जब मोदी जी की सरकार आने की थी तब हमारे किसानों का एक यूरिया यूरिया का रेट हुआ करता था 50 किलो का, सुन लीजिए आप, 50 किलो का जो आज रेट था उसमें 50 रुपए कम था, परंतु आज उस समय के रेट से 50 रुपए ज्यादा है और उस बोरी में 5 किलो यूरिया कम है। ये लोक लुभावने और झूठे वादे, जो यूरिया जो फास्फेट 300 रुपए का हुआ करता था आज 600 रुपए का है, जो डीएपी कभी 600 रुपए का हुआ करता 2014 के पहले आज वो 1460 रुपए का है, जो पोटास कभी 700 रुपए का हुआ करता था 1700 रुपए का है, मान्य। और इससे आप किसानों की आय दुगनी कर रहे हो कि किसानों को लूट रहे हो? पराक्रम जी से मेरा सवाल है, जब किसानों के पास फसल होती है उसका भाव होता है, जब इस क्षेत्र में किसानों के पास तुअल की फसल थी मान्यवर तो तुअल का भाव था 6,400 रुपए और जब फसल व्यापारी के हाथ में चली गई तो उसके रेट हो गए 10,000 रुपए। ये आपकी नीति है किसानों की आय दुगनी करने की?
जी गांड
किसान पछता रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे कौन से वादे पूरे कर लिए आपने?
पराटकर सर,
दूसरे मुद्दे ला लिए।
पराटकर सर, वर्तमान में सर युवा बहुत परेशान है, युवा शायद रोजगार के अवसर ढूंढ रहा है, युवा रोजगार के लिए कई जगहों पर जा रहा है, सरकार की जो भी योजनाएं आती है या फिर जो भी रोजगार के अवसर है उसमें सर बड़ी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता है। सर अगर एक युवा के रूप में देखा जाए तो सर ये पटवारी के जो हाल ही में जो धांधली के मामले सामने आ रहे हैं सर, इसको किस नजरिए से देखते सर? पलट कर सर।
जी सर,
जी सर,
आपका जो सवाल है कि पटवारी के मामले को किस प्रकार से देखते हैं, तो मेरा उसमें कहना है कि उसमें जहाँ पर सवाल उठे थे या जहाँ पर कुछ धांधली हुई थी तो उसकी अभी जांच चल रही है और उसकी जांच होने के बाद में उसका सभी के समक्ष वो उसका रिपोर्ट आ जाएंगी, उसमें जो भी जिस प्रकार की भी गड़बड़ी हुई होंगी उसकी जांच आपके समक्ष रहेंगी।
देखिए देखिए, परामर्श से मेरा सामने
जी ने बोला था कि किसानों की आय दुगनी हुई। अब मैं एक सवाल ये इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने पिछले 2018 के इलेक्शन में इन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी द्वारा इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किसान रोजगारी भत्ता देने की बात करी थी मध्य प्रदेश के समस्त युवाओं को, और किसानों का दो डिफाल्टर और चालू दोनों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करने की बात कही थी। कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला और कितने लोगों का किसान कर्ज माफी के अंतर्गत हुआ, मैं इनसे
आपका
सवाल है।
सर, आप किस भाजपा मंडल से आते हो परड़कर जी?
जी सर, सर
परड़कर
हाँ
जी, आपका
सर,
भाजपा का कौन सा मंडल है? लोधी खेड़ा, रामा, कौन सा मंडल से आते हो आप?
जी सर,
पिपला?
जी सर,
परड़कर जी निवेदन है।
मेरा मेरा पिपला मंडल है।
प्लीज
जी
सर,
सर, आपके पिपला मंडल के मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष केशव बापरकर जी, आप पहचानते उनको?
जी सर,
जी नहीं, परड़कर जी।
प्लीज
जी,
सर, सर प्लीज सर, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए
मैं
सर।
उसी का
जी
जवाब देना चाहता हूँ सर
सर, जी
आपको,
सर, सर
परड़कर जी
प्लीज
को।
सर, प्लीज सर, सर
हाँ
मेरा कहना यही है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लोग खासे परेशान हो रहे हैं, उसी बीच में सर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और लाडली बहना लाई थी, और उसी के कुछ अभी चुनाव आने वाले हैं, नारी सम्मान योजना लाई है, और हमारे देश के गृह मंत्री जी अभी सत्र में इन योजनाओं को लेकर रेवड़ी कह रहे हैं सर। सर तो गायकवाड़ सर, मेरा सवाल आपसे ही है कि रेवड़ी मतलब होता क्या है एक्चुअल में, और ये शासन की योजना है जो हितग्राही को मिल रही है, एक और सत्ता पक्ष योजनाओं को रेवड़ी कहता है, वही विपक्ष अगर देखे तो वो किस नजरिए से देखे सर? गायकवाड़ सर, गावड़े सर,
सर, वो भाजपा के नजरे में रेवड़ी होंगी, क्योंकि कांग्रेस कभी जनता के हितों के मुद्दों को रेवड़ी नहीं कहता। आज जितनी भी जननीतिश योजनाएं कांग्रेस ने जो अपना मैन्युफैक्चरिंग एमपी में प्रस्तुत किया है कि हम 1500 रुपये महिला को देंगे, तो देंगे, उसमें कोई दो बात नहीं। आज कांग्रेस ने बोला कि 500 रुपये सिलेंडर देंगे, तो इनको आज 20 साल बाद भाजपा को याद आई कि नहीं, सही में आज 500 रुपये सिलेंडर की आवश्यकता है। तो उन्हें 450 की घोषणा आज इनके आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की। तो क्या आज आपको 20 साल बाद आज याद आई? आज याद आई नारी सम्मान की? जो नारियों नारी नारी को आप 1000 रुपये महीना दे रहे हो, आज याद आई आपको सिलेंडर की? 20 साल से सरकार में होने के बाद ये सब लोग लुभावनी वादे इसलिए कर रहे हैं भाजपा, कि उनको दिख गया है कि पूरे मध्य प्रदेश से भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। तो वो बचने के लिए ऐसे लोग लुभावनी वादे ला रहे हैं। इनका कोई मैंने विजन नहीं है जनता के, जनता को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए। इनका विजन है सिर्फ सत्ता में रहने के लिए, इनका विजन दूसरा कोई नहीं है। इनका विजन है सत्ता में रहकर देश को कैसे लूटा जाए, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे कृषि का सेक्टर हो, चाहे वो रोजगार का सेक्टर हो, उनमें सिर्फ ये लूटने का योजना बना रहे हैं। इनके पास भाजपा के पास कोई विजन नहीं है, इसलिए ऐसी पूरी घोषणाएं कर रहे हैं।
जी सर, सर पराजकर सर, इसी को लेकर मेरा सवाल था
जी
कि गृह मंत्री जी ने जो योजनाओं को लेकर रेवड़ी कहा था, जो विपक्ष में जो भी राज्य में सरकारें हैं, जो योजनाएं लॉन्च हो रही है, इस पर सर आपकी प्रतिक्रिया और संक्षेप में सर, क्योंकि इस समय की पाबंदी है सर थोड़ी। जी सर,
जी सर, सर मध्य मध्य प्रदेश में भी देखिए आप, हमारी सरकार ने ना लोगों को चुनाव आया है कर कर लुभाने के लिए योजनाओं को का क्रियान्वयन नहीं करती है। हम 2003 में जब सरकार में आए थे, तब से लेकर आज तक हमने अनेकों अनेक योजनाएं इस मध्य प्रदेश के समस्त 7.5 करोड़ जनता के लिए योजनाएं लाई है। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, मेरिट के आधार पर हमारे बहनों को आज स्कूटियां प्रदान की जा रही है, और हमारे सरकार के द्वारा जो जो निर्णय किए जाते हैं वो जनहित को देखकर वो निर्णय किए जाते हैं। आज हमारे शिवराज जी ने लाडली बहना योजना चालू की है, आज 2 करोड़ से भी अधिक हमारी बहनों को उस योजना के माध्यम से 1000 रुपया प्रति माह, और आज उन्होंने घोषणा कर दी 250 रुपये, उसमें पीछे जोड़ के 1250 रुपये ये अक्टूबर माह से उनको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। हम लोगों ने जिस प्रकार की योजनाएं धरातल पर चलाई है, उनको बंद करने का काम कमलनाथ की सरकार ने किया था। अपने 15 महीने की जो उनकी सरकार रही, उसमें उन्होंने हमारी जो हितैषी योजनाएं थी उनको बंद कर दिया। जैसे लाडली बहना लाडली लक्ष्मी योजना जिस चल रही है, उसी प्रकार से हमारी एक योजना चलती थी, उसमें उन्होंने हमारी बहनों को जो उस योजना से लाभ मिलता था, उन योजनाओं को, ऐसी बहुत सी योजना है जिनका नाम मैं आपको समय की कमी है
एक
गिना नहीं
योजना का
पाऊंगा।
नाम बता दीजिए पराकर जी, झूठ मत
जी सर, जी सर,
बोलिए।
सर, 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 सर,
बहुत सी योजना है
सर,
ये हमारी का नाम बता,
हमारी सर,
सरकार,
सर,
हमारी सरकार आने के बाद में
आज का विषय था 15 बताइए,
आप सुनने की क्षमता नहीं है।
एक विषय पर दोनों मेहमान जो कि संजय पराटकर जी एवं नैनेश्वर गांडे जी ने अपने अपने विचार मोबाइल वाणी के साथ साझा किए। पराटकर सर, गांडे सर, राहुल गायकवाड़ सर, मोबाइल इनको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।